अध्याय 8 जल प्रलय के बाद। जल प्रलय के जल का स्तर सबसे ऊंचे पर्वतों से 15 हाथ ऊपर चला गया। जब 5 महीनों तक जहाज डामाडोल होता रहा और प्रकट रूप से हवा और लहरों की दया पर टिका रहा, कई बार जहाज के भीतर परिवार को लगा कि वे मारे जाएंगे। ये एक तनावपूर्ण कठिन परीक्षा थी, लेकिन नू का विश्वास अटल था, क्योंकि वो आश्वस्त था कि जहाज के कर्ण के ऊपर ईश्वर का हाथ था। जैसे जैसे जल का स्तर घटने लगा, परमेश्वर ने जहाज को उसकी सामर्थ्य में संरक्षित पर्वत श्रृंखला के बीच सुरक्षित स्थान की ओर बहने दिया। ये पर्वत एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे और जहाज इस शांत बंदरगाह में तैरता रहा। अब वो अपार समुद्र पर चालित नहीं था। इससे तूफान के सताए थके हुए जलयात्रियों को बहुत आराम मिला। नू और उसका परिवार जल स्तर के घटने की उत्सुकतावश प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वे भूमि पर फिर से जाने के लिए इच्छुक थे। पर्वत शिखरों के दृष्टिगोचर होने के 40 दिन पश्चात उन्होंने एक कौवे को बाहर भेजा, जो कि सुगंध को जल्दी पकड़ता है, ताकि ये पता चल सके कि भूमि सूख गई थी या नहीं। जब इस पक्षी को पानी के अलावा कुछ न मिला तो वो जहाज के इर्द गिर्द ही उड़ता रहा। 7 दिन बाद एक कबूतरी को भेजा गया और वो बैठने का स्थान न पाकर लौट आई। 7 दिन पश्चात नू ने फिर से कबूतरी को भेजा। जब वो शाम को अपनी चोंच में जैतून का पत्ता लिए लौटी तो वहां प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तब नू ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। फिर भी नू जहाज के भीतर धैर्यवान होकर रुका रहा। जैसे उसने परमेश्वर के आज्ञा देने पर प्रवेश किया था, वैसे ही उसने प्रस्थान के लिए उसके विशेष निर्देशों की प्रतीक्षा की। आखिरकार स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरा। उसने विशाल द्वार को खोला और कुलपिता और उसके घराने को, प्रत्येक जीवित प्राणी को साथ लिए बाहर आने को कहा। स्वतंत्रता की प्रसन्नता में नू उसे नहीं भूला, जिसकी अनुग्रहकारी देखरेख में वे बचाए गए थे। जहाज से बाहर आने के पश्चात उसका पहला कार्य था कि उसने वेदी खड़ी करके उस पर प्रत्येक प्रकार के शुद्ध पशु पक्षियों की होम बलि चढ़ाई और इस तरह महान बलिदान रूपी मसीह में विश्वास और मुक्ति के लिए परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाई। ये बलि परमेश्वर को सुखद लगी और उसके प्रतिफल में न केवल कुलपिता नू और उसके परिवार को, वरन धरती पर सभी रहने वालों को आशीष मिली। यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। यहां पर आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश है। नू ने उजाड़ धरती पर कदम रखा था, लेकिन फिर भी स्वयं के लिए घर बनाने से पहले उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। गाय बैलों के रूप में पशुधन भी उसके पास कम था और बड़े यत्न से बचाया गया था। फिर भी उसने प्रसन्नतापूर्वक उसका एक भाग परमेश्वर को अर्पित किया और सब कुछ परमेश्वर का होने की स्वीकृति दी। इस विधि से परमेश्वर को स्वेच्छा से दान देना हमारा सर्वप्रथम दायित्व होना चाहिए। उसके काम के लिए उपहारों और भक्ति के कार्यों के माध्यम से हमें उसकी दया और उसके प्रेम की हर अभिव्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इस कारण कि दूसरे जल प्रलय के भय से मनुष्य उमड़ते बादलों और बरसते हुए जल से दूसरे जल प्रलय के भय से निरंतर भयभीत न हो, परमेश्वर ने वाचा द्वारा नू के परिवार को प्रोत्साहित किया। मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट नहीं होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय नहीं होगा। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। मैं उसे देखकर ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। कितनी महान है पापमय प्राणियों के लिए उसकी कृपालुता और संवेदना कि उसने मनुष्य के साथ अपनी वाचा के चिन्ह के रूप में बादलों में धनुष को रखा। परमेश्वर घोषणा करता है कि जब वो धनुष को देखेगा वो अपनी वाचा का स्मरण करेगा। इसका यह तात्पर्य नहीं कि परमेश्वर कभी भूल जाएगा, बल्कि ये कि वो हमसे हमारी भाषा में बात करता है, जिससे कि हम उसे भली भांति समझ सकें। उसका उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ियों की संतानें स्वर्ग में आर से पार फैलाव वाले अति सुंदर वृत्तखंड को देख उसका मतलब पूछे और उनके माता पिता उन्हें जल प्रलय की कथा सुनाएं और उनसे कहें कि परम प्रधान ने धनुष को मोड़कर बादलों में इस आश्वासन के तौर पर रखा था कि पृथ्वी पर जल प्रलय फिर कभी नहीं होगा। इस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो मनुष्य के प्रति अलौकिक प्रेम की गवाही देगा और परमेश्वर में उसके विश्वास को दृढ़ करेगा। स्वर्ग में एक धनुष का आकार सिंहासन के और मसीह के सिर के चारों ओर घेरा बनाए हुए है। यहेजकेल 1:28 में भविष्यद्वक्ता कहता है, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। प्रकाशित वाक्य 4:2-3 में लिखा है, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। जब मनुष्य अपनी अति दुष्टता के कारण ईश्वरीय न्याय का पात्र बनता है, तब उद्धारकर्ता उसके पक्ष में पिता से विनती करते हुए पश्चतापी पापी के प्रति परमेश्वर की दया के प्रतीक के रूप में बादलों में धनुष, सिंहासन के चारों ओर और उसके सिर पर मेघ धनुष की ओर संकेत करता है। परमेश्वर ने स्वयं अपने अनुग्रह की प्रतिज्ञाओं में से सबसे उत्कृष्ट प्रतिज्ञा को नूह को दिए गए जल प्रलय संबंधित आश्वासन के साथ जोड़ा है। जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तब भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। यशाया 54:9-10। जब नूह ने शिकारी प्रबल हिंसक पशुओं को अपने साथ जहाज में से बाहर निकलते देखा, तो उसे लगा कि उसका परिवार, जिसमें केवल 8 सदस्य थे, जंतुओं का शिकार हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास के पास एक स्वर्गदूत को इस भरोसा दिलाने वाले संदेश के साथ भेजा, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। इस समय से पहले परमेश्वर ने मनुष्य को मांसाहारी आहार खाने की अनुमति नहीं दी थी। वो चाहता था कि वो वंश पूर्ण रूप से धरती की उपज पर निर्भर हो। लेकिन जब हर हरा पौधा नष्ट हो गया था, उसने उन्हें जहाज में बचाए गए शुद्ध पशुओं का मांस खाने की अनुमति दे दी। जल प्रलय के समय पृथ्वी की समस्त सतह में बदलाव आया। पाप के परिणाम स्वरूप उस पर तीसरा भयंकर शाप था। जल का स्तर नीचे आने पर पहाड़ और पहाड़ियां गंदे समुद्र से घिर गए। सब जगह मनुष्यों और जीव जंतुओं के मृत शव बिखरे हुए थे। परमेश्वर को ये स्वीकार नहीं था कि ये वहीं पर सड़कर वायु को प्रदूषित करें। उसने पृथ्वी को एक विशाल कब्रिस्तान बना दिया। समुद्र समान जल को सुखाने के उद्देश्य से प्रवाहित की गई तेज हवा ने उसमें ऐसी तीव्र गति उत्पन्न की कि कहीं कहीं वो पहाड़ों के शिखर भी बहा ले गया और मृतकों के शवों पर वृक्षों, चट्टानों और मिट्टी का ढेर लगा दिया। इसी माध्यम द्वारा जल प्रलय पूर्व संसार को धनवान बनाने और विभूषित करने वाले, वासियों में पूजनीय माने जाने वाले सोना और चांदी, श्रेष्ठतम लकड़ी और अनमोल रत्न मनुष्य की दृष्टि और खोज से संगुप्त कर दिए गए। जल की प्रबल प्रक्रिया ने इस निधि के ऊपर मिट्टी और चट्टानों का ढेर लगा दिया और कहीं कहीं इनके ऊपर पहाड़ भी उठा दिए। परमेश्वर ने देखा कि वो पापी मनुष्य को जितना अधिक धनवान और संपन्न बनाएगा, उतना ही उसके होते हुए भी वो अपने मार्गों को भ्रष्ट कर देगा। जिसके कारण बहुतायत से देने वाले की प्रशंसा होनी चाहिए थी, उस निधि की पूजा अर्चना की गई और परमेश्वर का तिरस्कार और अनादर किया गया।
धरती पर अवर्णनीय निर्जनता और अव्यवस्था का दृश्य था। वे पर्वत, जो कभी पूर्ण समरूपता के कारण सुंदर थे, अब क्षतिग्रस्त और उबर खाबड़ हो गए। धरती की सतह पर पत्थर, पहाड़ से निकली चट्टानें और खुरदरे पत्थर बिखरे हुए थे। कई स्थानों से पहाड़ और पर्वत अदृश्य हो गए थे और उनके वहां होने का कोई चिन्ह नहीं था, और समतल भूमि के स्थान पर पर्वत श्रृंखला उभर आई थीं। यह परिवर्तन कहीं कहीं स्पष्ट दिखाई देते थे। शाप का सबसे अधिक प्रभाव धरती पर वहां दिखाई पड़ा जहां सोने, चांदी और अनमोल रत्नों की बहुमूल्य निधि का भंडार था। उन देशों में जहां जनसंख्या नहीं थी, जहां अपराध बहुत कम था, शाप का प्रभाव कम पड़ा। इस समय घने जंगल दब गए। उस समय से ये कोयले में परिवर्तित हो गए जो वर्तमान में कोयले की खाने हैं, और जहां अधिक मात्रा में खनिज तेल पाया जाता है। यही कोयला और खनिज तेल प्रायः प्रज्वलित होकर धरती की सतह के नीचे जल जाते हैं। इस तरह चट्टाने गर्म हो जाती हैं, चूना पत्थर जल जाता है और लोहा पिघल जाता है। चूने पर पानी की प्रतिक्रिया अत्यधिक तपन को दुगना कर देती है, जिसके कारण भूचाल आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और कई अग्नि संबंधित घटनाएं घटती है। जब आग और पानी चट्टानों के बहिर्गत भाग और कच्चे धातु के संपर्क में आते हैं तो भूमिगत भारी विस्फोट होते हैं, जिनकी आवाज अवरुद्ध गर्जन की तरह होती है। वातावरण गर्म और घुटन भरा हो जाता है। इसके बाद ज्वालामुखी फट पड़ते हैं, और यदि तपे हुए पदार्थों को बाहर निकलने का पर्याप्त निकास नहीं मिलता तो स्वयं धरती कांपने लगती है और उसमें समुद्र की लहरों के समान उठ जाती है, जिसमें कभी कभी संपूर्ण नगर, गांव और ज्वलंत पर्वत निगल लिए जाते हैं। यह आश्चर्यजनक दृश्य तात्कालिक विनाश के चिन्हों के तौर पर मसीह के द्वितीय आगमन के ठीक पहले और ज्यादा देखने को मिलेंगे। धरती का आंतरिक भाग परमेश्वर का शस्त्रागार है, जहां से प्राचीन जगत के विनाश हेतु उपयोग में आने वाले शस्त्रों को निकाला जाता था। धरती से प्रवाहित जल और स्वर्ग से छोड़े गए पानी ने मिलकर धरती को निर्जन बनाने का कार्य संपन्न किया। जल प्रलय के उपरांत अग्नि और पानी अत्यंत दुष्टतापूर्ण नगरों के विनाश के लिए परमेश्वर के माध्यम रहे हैं। यह न्याय इसलिए किया जाता है ताकि जो परमेश्वर की व्यवस्था का अनादर करते हैं और उसके प्रभुत्व का तिरस्कार करते हैं, उन्हें उसकी सामर्थ्य के आगे समर्पण करने और उसकी न्याय संगत प्रभुता को ग्रहण करने के लिए प्रभावित किया जा सके। ज्वलंत पर्वतों से पिघले हुए खनिज पदार्थ की प्रचंड धारा और आग व उसकी लपटों को, निर्जल हुई नदियों को, अपरिहार्य जनपूर्ण नगरों को, व्यापक विनाश और निर्जनता को देखकर सबसे साहसी हृदय भी भयभीत हो गया, और अविश्वासी और ईश निंदक भी परमेश्वर की अनंत सामर्थ्य का अंगीकार करने के लिए विवश हो गए। प्राचीन कालीन भविष्यत वक्ताओं का इन दृश्यों के संदर्भ में यह कहना था, भला होता कि तू आकाश को फाड़कर झाड़ झंखाड़ को जला देती या जल को उबालती। उसी रीति जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे, जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे। तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। यशाया 64 आयत 1-3, नहूम 1 आयत 3-4 में लिखा है, यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांवों की धूल है। उसके धड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। मसीह के द्वितीय आगमन के समय इससे भी अधिक भयावह प्रदर्शन, जैसे संसार ने अभी तक नहीं देखे, देखने को मिलेंगे। नहूम 1 आयत 5-6 में लिखा है, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। उसके कोध का सामना कौन कर सकता है? भजन संहिता 144 आयत 5-6 में लिखा है, हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतरा, पहाड़ों को छू तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़कड़ाकर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लाहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रेरितों के काम 2 आयत 19। प्रकाशित वाक्य 16 आयत 18
20:21 में लिखा है, फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। स्वर्ग से प्रवाहित बिजली और धरती की आग के साथ मिल जाने पर पर्वत भट्टी के समान भभक उठेंगे और लावा की भयंकर नदियां उगलेंगे, जिससे बगीचे और खेत, गांव और शहर नष्ट हो जाएंगे। खौलते हुए तरल पिंड नदियों में गिरकर पानी में उबाल ले आएंगे, जिससे अवर्णनीय उग्रता के साथ विशाल चट्टाने उछलेंगी और समस्त धरती पर अपने टूटे फटे अंश फैला देंगी। नदियां निर्जल हो जाएंगी, पृथ्वी कंपकंपाने लगेगी और हर जगह भूकंप और विस्फोट होंगे। इस तरह परमेश्वर पृथ्वी पर से दुष्टों का विनाश कर देगा, लेकिन इस गड़बड़ी के बीच धर्मी सुरक्षित रखे जाएंगे, जैसे नूह को जहाज ने सुरक्षित रखा गया था। परमेश्वर उनका शरण स्थान होगा और उसके चरणों तले वे विश्वस्त होंगे। भजन संहिता 91:9-10 में लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। भजन संहिता 27:5। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। भजन संहिता 91:14।